यावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी वाले की जय। मोहनलाल जी जो है भगवान के सूर्यता का भी समय करने के लिए कहा कि भगवान की जो दया है, ईश्वर की दया और प्रेम, उसके विषय में कहने के लिए क्या कहें। भगवान के वहां जो दया है, प्रेम है, इस बात को ज्ञान होने से ही मुक्ति हो जाए, परम शांति मिल जाए। स्वयं भगवान गीता की पांचवें अध्याय के अंतिम में 29 के श्लोक के उत्तरार्ध में यह बात कही है कि सूर्यदम सर्वभूता मांग ज्ञात मांग शांति मिलती थी। मैं सारे भूतों का सूर्य हूं, ये बात जान करके मनुष्य को असली जो शांति है वो प्राप्त हो जाती है। जानकर कुछ करना नहीं पड़ता, जानने को फल है। देखो कितने लाभ की बात है, कैसी रहती बात गीता में पढ़ी है और अपने शांति के लिए भटकते फिरते हैं। और भगवान शांति का कितना सरल उपाय बताया कि थाने कोई भजन नहीं करना पड़े, ध्यान नहीं करना पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़े। जिसका आदमिया को भगवान में प्रेम है, बना तो भजन ध्यान करना नहीं पड़े, वो तो अपना आप ही हुए। और जो आदमी भजन ध्यान में बेकार समझे, उसी के लिए यह बात मैं कही है कि थाने भजन को नहीं करना पड़े, ध्यान को नहीं करना पड़े। अरे जी का भगत है, उन्होंने मैं यह बात कहूं कि थाने भजन नहीं करना पड़े, ध्यान नहीं करना पड़े, तो उनको तो ये बात है बहुत खटके की। बोले कि एक प्रकार से भजन और ध्यान के लिए मैं तो कोशिश कर रहा कि किसी तरह हमारा निरंतर भजन ध्यान हो, और ये माना क्या कि थाने को नहीं करना पड़े। तो यह बात उनके लिए कही जावे है कि जिसका भजन जानने आप समझे, बेकार समझे, तो वहां के लिए यह बात है। जिसका का भजन ध्यान जीवन है, जिसका भजन ध्यान ने आपको जीवन समझे, उसके लिए अब आप मैं नहीं कही। जीवन को अभिप्राय है, जैसे प्राण जो है, श्वास आणो जानो जो अपने लिए जीवन है, श्वास आणो जानो बंद हो जावे तो मेरे को जीवन समाप्त हो जाए। तो जैसे एक प्रकार से प्राण प्यारा है, उससे भी बढ़कर जिनको भगवान सो प्यारे हैं, उनके तो भगवान को भजन ध्यान ही जीवन है। वे तो कैसे जीवे, जी नहीं सके। जैसे श्वास के बिना मनुष्य जी नहीं सके, श्वास बंद हो जावे तो मनुष्य मर जाए, इसी तरह से उनके तो जीवन को आधार ही भगवान को भजन ध्यान है। भजन ध्यान के लिए जीवे, वास्ते जीवन है जिनको उसी के लिए है। जैसे कह रही कि मच्चिता मदगत प्राण, मदगत प्राणों को यू ही अभिप्राय है। भगवत गति जिनके प्राण, भगवान के लिए जिनको संसार में जीवन है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। ऐसा जिनको भाव है कि जीवन किसके लिए, भगवान के लिए, तो जीवन से भी भगवान प्यारा है। तो जिनको जीवन से भी बढ़कर भगवान प्यारा है, और भजन ध्यान एक प्रकार जिनको जीवन है, उन पुरुषों का तो भजन ध्यान अपना आप ही हो है। ऐसे पुरुषों ने यदि मैं यह बात कहूंगी कि निरंतर भजन ध्यान कराया करो तो वहां मुझको हंसते हैं कि देखो ये क्या कहते हैं, भजन ध्यान करने की क्या आवश्यकता, वो तो आप ही हो है। कभी श्वास लिया करो, श्वास तो आप ही आवे, श्वास लेना थोड़ा ही पड़े, जिससे श्वास अपने आप ही चलते हैं। ऐसे उन पुरुषों का तो, प्रेमी भक्तों का तो भजन और ध्यान आप ही चलता है, उनके लिए तो ये एक अपराध है कहना कि तुम्हारे को भजन ध्यान नहीं करना पड़ेगा, भक्ता का अपराध है। करना पड़े कोई आपत थोड़ी है। तो भगवान को जब सूर्य जान लेवे तो वाह क्या बात, उसके ज्ञान से ही परम शांति हो जाओ। सूर्य का मतलब यह है कि भगवान के समान दुनिया में कोई प्रेमी नहीं, भगवान के समान कोई दयालु नहीं। दया और प्रेम उनका जो है जीवों के ऊपर सब के ऊपर स्वार्थ रहित हेतु रहित है। भगवान निष्काम भाव से प्रेम करने वाले और निष्काम भाव से दया करने वाले, निष्काम भाव से दया करने वाले मनुष्य का दर्शन हो जाए तो चित्त में कितनी प्रसन्नता हो। जिस आदमी के वहां कोई स्वार्थ नहीं है, न मान बढ़ाई की इच्छा है, न कोई अहंकार न ममता है, किंतु निष्काम भाव से उसके हित के लिए रत है, तो ऐसा मनुष्य तो भगवान ही है कि भगवान का भक्ति दो ही है। बाकी सब तो अपने मतलब और मनमार जगत जो है वो तो एक प्रकार से समझो कि अपने स्वार्थ की मित्रता है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, हे असुरवरी, हेतु रहित बिना प्रयोजन और हित करने वाला उपकार करने वाला या तो आप हो और ये आपका सेवक आपका जो भक्त है वह है। तीसरा तो कोई है ही नहीं, बाकी तो क्या है कि सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ लाग करै सब प्रीति, सुर जो देवता नर जो मनुष्य है और मुनि जो तपस्वी है सबकी यही रीति है कि स्वार्थ को लेकर प्रेम करते हैं। उन मनुष्यों के माँ मुनियों के माँ देवताओं के बीच में इस दो को छोड़कर या तो आप और आपका भक्त तो भगवान है वो तो एक प्रकार से देवताओं के माँ भगवान को छोड़कर बाकी सब देवता कई ढंग का है। और दूसरी बात यह कि भगवान जब अवतार लिया मनुष्यों का तो वह भक्त में भी भगवान श्री राम कृष्ण अवतार ले तो श्री कृष्ण और मनुष्यों में और मुनियों में इन में दूसरा जो है सो उन मुनियों के वहां जो भगवत प्राप्त पुरुष है उसको बात देख वो तो एक प्रकार से दो आदमियों के वहां आपने सभी आगे भगवान के बीच के वहां तो भगवान का जो निराकार साकार स्वरूप आ गया और भक्तों के बीच में ज्ञानी महात्मा भगवत प्राप्त पुरुष आ गए। ईश्वर और शुद्ध की महात्मा इन दो को छोड़कर के बाकी सब के सब ही स्वार्थ करके ही मित्रता करते हैं। तो ये कितनी ऊंचे दर्जे की चीज है। तो ऐसा पुरुष जो आपने कोई भगवत भक्त भी मिल जावे तो मैं कभी अपने ज्ञान से परम शांति मिल जावे और भगवान मिल जाओ तो मैं भी ज्ञान से परम शांति मिल जावे कि भगवान सुरित है और तो भगवान के बीच के मां भी लोग दो सृष्टि करते हैं। तो ख्याल करने की बात है कि कोई महात्मा हो चाहे ईश्वर हो बिना ही कारण प्रेम करे यह बात जैसे देखने में आ जाए तो प्रत्यक्ष में शांति मिलती है, न मिले तो जरूर उस पर हमारी दो सृष्टि है। दो सृष्टि होने के कारण से श्रद्धा की कमी है, श्रद्धा की कमी के कारण से प्रेम की कमी है और प्रेम की कमी के कारण से शांति की कमी है। यदि एक प्रकार से थी दोष दृष्टि नहीं है हमारी तो यदि ऐसा कोई हमारे को पुरुष मिल जावे कि अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है कि न तो कोई रुपयों का स्वार्थ है न कोई शरीर के आराम का स्वार्थ है न कोई समझो कि आपने मान बड़ाई पूजा चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता है और हमारे हित के लिए हमारे कल्याण के लिए हमारे से प्रेम करता है ऐसा मनुष्य हमको यदि मिल जाए तो उसको हम छोड़ भी कर सकते हैं। फिर और इससे बढ़कर क्या चाहे, उससे बढ़कर तो कोई होता ही नहीं तो फिर हम क्यों भटकेंगे संसार। तो समझो कि ऐसे तो भगवान ही हैं, और जो दूसरा कोई है तो वो भगवान के तुल्य है। तो भगवान बिना ही कारण से प्रेम करते हैं। माँ जो अपने बच्चे से प्रेम करती है वो बिना कारण से नहीं, वो तो एक प्रकार से स्वार्थ को लेकर की कि लड़का बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा, और मोह के बस में होकर के, आसक्ति के बस में होकर के, और स्वार्थ के बस में होकर के सेवा करे। किंतु भगवान के माने तो आसक्ति है न कोई स्वार्थ है न कोई मोह है, कुछ भी नहीं है। वह तो केवल एक प्रकार से बैंक कल्याण के लिए बस प्रेम करे, तो उसी के हित के लिए, उसी के कल्याण के लिए प्रेम करे, अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। ऐसा तो मनुष्य कोई करोड़ों में एक होता है, और भगवान तो एक ही है, भगवान तो नाना है नहीं। तो ये बात भगवान के मां है। भगवान कहते हैं कि इस तत्व को जो जान जाता है, इस रहस्य को जो जान जाता है, बस उसी वक्त उसको शांति मिल जाती है कि मेरा कैसा स्वभाव है। तो भगवान के स्वभाव के बीच के मां अपार दया है, अपार प्रेम है, जिसकी कोई सीमा नहीं। और वो प्रेम और दया जो जीवों पर करते हैं भगवान, बिना ही कारण से करते हैं। और भगवान की उच्च कोटि के जो भगत होते हैं उनके भी ऐसे लक्षण बतलाए कि जैसे अद्वेष्टा से भूताराम, मैत्र करुण एवच, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी। तो भगवान ने कहा कि योमत भक्त से मे प्रिय है, योमत भक्त से मे प्रिय है, जो इस प्रकार का मेरा भक्त है वह मेरे को प्यारा है, जो इस प्रकार का मेरा भक्त है वह मेरे को प्यारा। कैसा भक्त है? अद्वेष्टा भूता, जिसका द्वेष तो किसी भी जीव में है ही नहीं, किसी प्राणी के लिए, किसी भी व्यक्ति में जिसका द्वेष बैर ये तो समझो नामो निशान नहीं। और सब में प्रेम है, सब पर दया है। कैसी दया? कि आपकी माफी की सबको बनाना चाहता है, आपके माफक की सबको बनाना चाहता है, तो कितनी बड़ी दया है। और प्रेम करता है, कोई भी प्रयोजन नहीं और सबसे प्रेम करता है। अपना जो तन है, मन है, धन है, इसको अर्पण कर देता है दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। और ऐसा कर करके भी अहंकार मन में नहीं रहता, अभिमान नहीं रखता कि मैंने कुछ किया है, ऐसा दावा नहीं रखता। तो आप ध्यान देकर देखो ऐसे कितने आदमी संसार में आपको मिलेंगे। तो बड़े उच्च दर्जे की चीज है, किसी में भी हो, तो यह बात समझ करके आपने इस बात को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यह बात आपने प्राप्त होगी तो भगवान तो आप ही प्राप्त हो गया। भगवान तो खुद कहते हैं ऐसा मेरा भक्त मैंने प्यारा है। जब भगवान को ऐसा प्यारा होगा तो भगवान आप ही आवेंगे, हमको बुलाना क्यों पड़ेगा। तो ऐसा बनना चाहिए। यौन मात्र सारे प्राणियों के ऊपर माने अपार दया, पूर्ण दया, और सारे प्राणियों के साथ के मां आनंद प्रेम, विशुद्ध प्रेम, जिस सबसे जो निष्काम भाव से प्रेम करना है वो भगवान से ही प्रेम है। दूसरी बात ये, भगवान से मैं विराजमान है इसलिए भी भगवान से ही प्रेम है। तीसरी बात यह, भगवान ही सब इस रूप में प्रकट रहे हैं इसलिए उनसे जो किससे प्रेम हो भगवान से ही प्रेम है। भगवान के लिए जो किसी में प्रेम है वो भगवान से ही प्रेम है। अदृष्टा से भूतानां मैत्रकरुणे, सारे भूतों में द्वेष भाव सहित होना और सबके वहां मित्रता और सबके ऊपर दया जिसमें कोई हेतु नहीं, स्वार्थ नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं, शरीर के आराम के लिए नहीं, पैसों के लिए, बल्कि शरीर को तो अर्पण कर देता है, अपना जो तन है, धन है, मन है, इसको अर्पण कर देता है उसके कल्याण के लिए, ऐसी उनकी दया होती है, प्रेम होता है, निर्ममो माने ममता का अत्यंत अभाव, ममता ने लेकर के नहीं, जिसे ममता ने लेकर तो गा भी अपने बच्चे पर प्रेम करे, पशु भी मोह को लेकर के, ममता को लेकर के, मोह ममता को लेकर के तो सारी दुनिया ही प्रेम करे नहीं, किसी के वहां मोह ममता नहीं, और ऐसा होकर के जिसके वहां अपने श्रेष्ठ पने का अभिमान भी नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं, और कोई उसके साथ में अपराध कर दे तो उसके अपराध को अपराध ही नहीं मानता, ऐसा क्षमाशील है, और ईश्वर के विधान के अनुसार जो भी कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है, ये तो सुख दुख प्राप्त उसको ईश्वर का ही विधान मानता है, इसलिए उनमें सब संभाव रहता है, कितनी ऊंचे दर्जे की चीज, उसके वहां हर वक्त प्रसन्नता और शांति रहती है। संतुष्ट सततन योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय है, और मयर्पित मनोबुद्धि योमद भक्त सम्यक, ऐसा जो योगी या न भक्त हर वक्त आनंद के वहां मस्त रहता है, हर वक्त उसको शांति रहती है, शांति के सागर में डूबे रहता है, और मन जिसका जीता हुआ है, बुद्धि जन की स्थिर है, और मेरे प्रति मन और बुद्धि को जिसने अर्पण कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यार है। मन और बुद्धि को अर्पण करना क्या, बुद्धि भगवान में लगाना, बुद्धि को भगवान में अर्पण करना, मन भगवान में लगाना, मन को भगवान के अर्पण करना, उनकी बुद्धि में एकदम ये निश्चय है कि भगवान है और भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है, बढ़कर के है, ये जो एकदम प्रत्यक्ष की माँ वो निश्चय है, ये बुद्धि का भगवान के प्रति अर्पण है, और उनकी बुद्धि हर वक्त भगवान में लगी रहती है, ऐसे ही मन भगवान में लगे रहता है, कहते हैं कि वह मुझको बहुत ही प्यारा है, इसलिए तो भगवान कहते हैं मय मन आदर्श मई बुद्धि निवेश निवृष्टि मय अर्थ संश्वास है, तू मेरे मन को लगा, मेरे बुद्धि को लगा, इस प्रकार मन बुद्धि में लगाने के उपरांत मेरे को प्राप्त होगा, वो कोई संज्ञा की बात नहीं। तो जब ऐसी बात भक्तों में देखी जाती है तो भगवान को फिर कारण क्या है, भगवान की दया को तो कोई पार ही नहीं है, भगवान तो दया के एक सागर हैं, सारी दुनिया की दया हम इकट्ठी करें तो भगवान की जो दया है, यानी भगवान जो दया के सागर हैं, उस भगवान के दया के सागर की एक बूंद के समान भी सब की मिलकर के दया नहीं हो सकती, ऐसे प्रभु है तो दया, बिना ही कारण दया करने वाले हैं, कोई भी उनसे मदद चाह रहा, अपने पर दया चाह रहे तो भंडार खुला हुआ है, जैसे कोई भी गंगा जी के पास में जाकर जल चाहे सुबह के लिए गंगा जी ने अपने जल का भंडार खोल रखा है, वो रात और दिन गंगा बहती रहती है, जितना दरकार हो जल ले लो और बार बार ले लो, कोई मना ही नहीं, लेने वाला कितना ही ले लो। गंगा की तरफ से थी तो गंगा एकदम कपाट खोल रखा। ऐसे भगवान की दया कोई चाहे जितनी ले लो, उसका तो प्रवाह हर वक्त बहता है। गंगा का प्रवाह तो जहां गंगा वहीं बहता है, और भगवान तो सब जगह है, इसलिए उसकी दया का प्रवाह सब जगह बहता है। यहां भी समझो कि आपने भगवान की दया अपनी इच्छा उतनी ग्रहण कर सकते हो, किंतु गंगा जल तो गंगा के पास जाकर ही आपको ग्रहण करने के लिए मिलेगा, और भगवान तो सब जगह है। तो भगवान की जो दया है उसको देख देख करके मनुष्य को आश्रित होता है, आनंद आता है, शांति मिलती है, जिसमें प्रसन्नता होती है। क्या हाल देखो, मैं एक तुच्छ जीव जिसके ऊपर भगवान की कितनी भारी दया है। भगवान जल्दी से जल्दी मेरा सुधार होकर के उद्धार हो जा, इसके लिए अपने दया का भंडार खोल रखा है। लेनी अच्छा ही थी दया ले लो, जितनी दया अपने पर मनुष्य मानता है उससे भी वो अधिक दया, जो मानता के मैं नहीं आ सकती, समझ में नहीं आ सकती, इतनी भगवान की अब सब के ऊपर सुधा है। इस दया के विषय में एक आपको कहानी बतलाई जाती है। कहानी उसका नाम है जो लोकोक्ति, संसार के बीच के में जो प्रचलित कोई बात हुए या कोई एक प्रकार से मानी हुई हो वो प्रमाणिक नहीं, ऐतिहासिक बात नहीं कि वही हुई हुए, वही भी हो नहीं भी हो, तो कथा उसको नाम है कि जो शास्त्र में कोई इतिहास हुए एक प्रकार से, शास्त्र में जिनको वर्णन हुए, शास्त्र जिनके लिए प्रमाण देते हुए शास्त्र के मन जो बात आई वो कथा है, कहानी है।